नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देखो, नागराज के दो पुत्र थे। वो ब्राह्मण वेश में आए, पृथ्वी पर घूमते थे, तो राजकुमार ऋतध्वज से उनकी मित्रता हो गई। तो उन नागपुत्रों ने विचार किया कि जीवन में अच्छे आदमियों के साथ रहना चाहिए। ऋतध्वज है, बहुत अच्छा राजकुमार है। तो वे रात को तो चले जाते पताल में और दिन को आ जाते थे पृथ्वी पर। तो नागराज के पिताजी ने पूछा, सॉरी, नागराज ने पूछा अपने दोनों पुत्रों से कि बेटा, तुम लोग यहां पताल में दिन में रहते ही नहीं हो, वहां मनुष्य लोक में रहते हो, क्या बात है, क्या कारण है? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कुवलयाश्व नाम का राजा, उसका लड़का है ऋतध्वज। कुवल्याश और ऋतध्वज दोनों एक ही है।
अश्व के कारण कुवल्याश हुआ, अश्व के कारण कुवल्याश हुआ नाम पड़ा।
हाँ,
ऋतध्वज एक ही है।
ऋतध्वज और वो दोनों एक ही कुवल्याश। इनके पिता का नाम था शत्रुजीत। तो उसका पूरा चरित्र सुनाया कि ऐसे ऐसे ऋतध्वज धर्म में लगा हुआ और उसके जीवन में ऐसी ऐसी बाधा आई। उसने पाताल केतु को, जो सुअर बन करके आया था, उसका पीछा किया और उसको धर दबोचा और ऐसे मदालसा उसको एक स्त्री मिली। अब उसका बदला लेने के लिए, पताल केतु का बदला लेने के लिए, ताल केतु नाम का एक राक्षस था, वो ब्राह्मण का वेश बना करके, और शत्रुजीत जो ऋतध्वज का पिता था, उसको कहा कि जी, कोई यज्ञ करना चाहता हूं, मेरे यज्ञ में बाधा होती है, मेरे यज्ञ की रक्षा करो। तो उन्होंने ऋतध्वज को भेज दिया। ऋतध्वज गया वहां। उसने कहा, देखो, यज्ञ के लिए मुझे कहीं से ईंटें लानी पड़ेगी और भी सामान लाना पड़ेगा, ये राक्षस लोग मेरे बाधा डालते हैं, आप इसी आश्रम में ही रहना। और फिर वो नदी में डूब करके अपना वीर, अपना स्वरूप बदल करके और शत्रुजीत राजा के पास जाके साहब उसका कंठा ले लिया उसने कि हाँ, ये दे दीजिए मुझे, चला गया। और कह दे, साहब देखो, ये उसका कंठा है, मरते मरते हमको दिया है, आपका लड़का मर गया। उसका बाप बहुत गंभीर था कि मर गया तो मर गया भाई, कोई दुख नहीं किया, रानी ने भी दुख नहीं किया और अच्छा काम करते हुए मरा है। पर उसकी पतिव्रता श्रेष्ठ स्त्री मदालसा वो सुनते ही मर गई। तो उसके बाद अब ये ऋतध्वज की कथा सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा वो ऋतध्वज है। तो कहा, अच्छा, इतना है, वो मदालसा मर गई कि? हाँ, मर गई। तब उसने महादेव को प्रसन्न किया, नागराज ने, और महादेव से वरदान लिया और महादेव को कहा कि बोलो, क्या चाहते हो? कि हम मदालसा को जो है, हम चाहते हैं मदालसा हमारे यहां उत्पन्न हो, तो उसके तीन फण थे, तो बीच के फण से मदालसा पैदा हो गई। इधर उन दोनों राज को, ये तो रोज आते थे, इन्होंने एक दिन इसको कहा रितद, अरे उधर से ऋतध्वज आ गया अपने पिताजी के पास। पिताजी के पास आया तो पिताजी ने कहा, अरे क्या हुआ रे भाई, हमने सुना तू मर गया। कह, नहीं नहीं, जीवित हूं आपके सामने। अरे तेरा तो वो कंठा आ रखा साहब, वो तो कोई ऋषि मेरे से मांग ले गया था, मैंने दे दिया। कि भाई तेरी पत्नी, तो वो पत्नी के वहां गया तो वो मर गई। सुना बड़ा दुख हुआ उसको। तो अब ये दोनों भाई बोलते हैं कि आप हमारे नागलोक में चलो। तो मैं पिताजी को प्रणाम करता हूं, उनकी आज्ञा हो जाएगी तो मैं आपके यहां चलूंगा। यूं कहकर के ऋतध्वज दोनों नाग कुमारों को साथ में लेकर के पिताजी के पास गए। पुण्य सलिला गोमती नदी पर गए। पिताजी ने कह दिया चले जाओ, इनके साथ चले जाओ। पिताजी की आज्ञा लेकर के अब आगे चले। जिस गोमती नदी के किनारे गए थे तो गोमती नदी के बीच की धारा में वो दोनों उतरने लगे, तो राजकुमार ने सोचा कि नदी के उस पार इनका घर होगा, चलो अपने। अब चलो क्या, जो नदी के बीच में पहुंचे तो दोनों नाग कुमारों ने उनको पकड़ लिया और पताल ले गए। और वहां पर जाकर के उन्होंने स्वस्तिक लक्षणों वाले सुशोभित सुंदर नाग कुमारों के रूप देखा। अरे तो उस समय तो ये ब्राह्मण शरीर में थे, वहां जाती वो नाग कुमार बन गए। तो राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। उनका अरे भाई, हम तो आपको ब्राह्मण समझे, हमारे साथ इतनी मित्रता, आप तो नाग कुमार हो, ये आपका लोक है? कि हाँ हमारा लोक है, तो आप वहां क्यों आते थे? हम तो अच्छे आदमियों का संगत करना चाहते थे, आप बहुत अच्छे मिले इसलिए हम आए। वहां भाई, अब वो पताल के और नीचे गए, वहां कहीं वीणा बज रही है, कहीं बंसी बज रही है, कहीं संगीत के नाग हो रहे हैं, कहीं मृदंग हो रहा है, कहीं ढोल बज रहा है, सैकड़ों हजारों सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं। इस प्रकार अपने प्रिय नाग कुमारों के साथ पाताल की शोभा देखते हुए राजकुमार ऋतध्वज और आगे बढ़े। आगे जाने पर नागराज का जो विशेष महल था उसमें प्रवेश किया। नागराज अश्वतर सोने के सिंहासन पर, जिसमें मणि मूंगेर वैदुरी आदि रत्नों की झालरें लगी हुई थी, उसके ऊपर विराजमान थे। उनके अंगों में दिव्य हार एवं दिव्य वस्त्र शोभा दे रहे थे। कानों में मणिमय कुंडल झिलमिला रहे थे। सफेद मोतियों का हार पहन रखा था। देखो, ये जो नागराज है ना, ये कोई यूं हरदम यूं सर्प नहीं, उनके तो यहां ही एक सर्प का चिन्ह रहता था, बाकी सब अपने जैसा ही शरीर था उनका। सफेद मोतियों का हार वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रहे थे। भुजाओं में भुजबंद सुशोभित थे। यहां दोनों नाग कुमारों ने, यही हमारे पिताजी हैं, राजकुमार को दर्शन कराया और पिताजी से निवेदन किया कि पिताजी, आप पूछते थे कि मृत्यु लोक में तुम किसके साथ रहते हो, ये हमारे परम मित्र वीर कुवलयाश्व है, इनको ऋतध्वज भी कहते हैं। ऋतध्वज ने नागराज को प्रणाम किया, नागराज ने उनको हृदय से लगाया और फिर मस्तक सूंघ करके कहा, बेटा ऋतध्वज चिरंजी रहो, शत्रुओं का नाश करके माता पिता की सेवा करो, तुम धन्य हो क्योंकि मेरे पुत्रों ने परोक्ष रूप में तुम्हारी प्रशंसा की है। जिस आदमी की पीठ पीछे प्रशंसा होती है, उस आदमी की प्रशंसा वास्तविक होती है, सच्ची होती है। मुंह के आगे तो सभी बोलते हैं। तो मन वाणी और शरीर की चेष्टाओं के साथ गुण और गौरव में आगे बढ़ते रहो। जो आदमी संसार में जितना गुण संग्रह करता है वही प्रशंसनीय है। गुणवान पुत्र पिता माता को शांति एवं संतोष प्रदान करता है। देवता, पितर, ब्राह्मण, मित्र, याचक, दुखी सभी गुणवान पुरुष के चिरंजीवी होने की अभिलाषा रखते हैं, जिनकी कभी निंदा नहीं हुई, जो दीन दुखियों पर दया करते हैं तथा विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य जिसकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान पुरुष का ही जन्म सफल होता है। वीर कुवलयास्र से यूं कहकर उनका स्वागत सत्कार करने के लिए नागराज अपने पुत्रों से बोले, पुत्रो तुम खूब अच्छे ढंग से इनका स्नान आदि करके स्वागत करके अच्छा भोजन कराओ, उसके बाद हम लोग इनसे मन को प्रसन्न करने वाली बातें करेंगे और कुछ काल तक इस ऋतध्वज के साथ बैठेंगे। राजा शत्रुजीत के पुत्र ऋतध्वज ने चुपचाप उनकी आज्ञा मानी। तत्पश्चात सत्यवादी न्यागराज ने अपने पुत्रों तथा राजकुमारों को बहुत प्रसन्नता के साथ भोजन वगैरह करवाया। इधर सुमति बोल, देखो एक को एक, एक को एक, एक को एक यूं बोलते हैं। इधर वो सुमति अपने पिता से बोलता है, पिताजी इस प्रकार नागराज महात्मा अश्वतर जब भोजन कर चुके और उनके पुत्र और राजकुमार तीनों ने उनके पास भोजन किया तो सब अपने एक स्थान पर बैठ गए। नागराज ने मन को प्रिय लगने वाली बातें कहकर अपने पुत्रों के सखा को प्रसन्न करते हुए का पूछा, आयुष्मान ऋतध्वज आज तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? जिस वस्तु में तुम्हारी खूब इच्छा हो वो तुम मुझे बताओ। जैसे पुत्र अपने पिता से मन की बात नहीं छिपाता, इसी प्रकार तुम भी निशंक होकर अपने मन की बात कहो। सोना ले, चांदी ले, वस्त्र ले, वाहन ले, आसन ले, या और भी कोई तुम्हारी दुर्लभ वस्तु हो तो वो मांगो। आज तुम्हारे लिए सब कुछ खुला है। कुवलयाश्व ने कहा, वही ऋतध्वज, भगवान आपके प्रसाद से मेरे पिता के घर में न सोने की कमी है, न चांदी की कमी है, न वस्त्र की कमी है, न आसन की कमी, कोई चीज की कमी नहीं है, इसलिए मुझे वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक पिताजी, मेरे पिताजी हजारों वर्षों तक पृथ्वी का शासन करते हैं और आप पाताल लोक का राज्य करते हैं, तब तक मेरा मन से याचना करना भी अच्छा नहीं है। मैं क्यों याचना करूं? पृथ्वी लोक में मेरे पिता, पाताल में आप, अब मैं नई इच्छा क्यों करूं? जिनका पिता जीवित रहता है वे परम सौभाग्यशाली पुण्यात्मा है। भला मेरे पास क्या नहीं है? सज्जन मित्र होने चाहिए जीवन में, देखो ये चीजें होनी चाहिए। एक तो अपना मित्र सदा सज्जन होना चाहिए, एक शरीर निरोग रहना चाहिए, एक धन अच्छा होना चाहिए, यौवन अच्छा होना चाहिए, सब मेरे पास है। इस बात की मेरे मन में चिंता न करके कि मेरे घर में धन है या नहीं, पिता की भुजाओं की छत्र छाया में रहते हैं वे सुखी हैं, धन आदि की इच्छा नहीं हो। जो लोग बचपन से ही पितृहीन होकर कुटुंब का भार वहन करते हैं, उनका सुख भोग छिन जाने के कारण मैं तो यही समझता हूं कि विधाता ने उन्हें सौभाग्य से वंचित कर दिया। मैं तो आपकी कृपा से पिता के दिए हुए धन आदि के भंडार में से प्रतिदिन वहां जाकर याचकों को तो दान देता हूं और जितनी मेरी इच्छा होती उतना दान देता हूं। यहां आकर मैंने अपने मुकुट से जो आपके दोनों चरणों का स्पर्श किया है तथा आपके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, इसी से ही मैंने सब कुछ पा लिया। राजा नागराज अश्वतर ने प्रेम से कहा कि देखो अभी तुमने अपनी कोई प्रसन्नता वाली चीज नहीं कही, ये तो जो कहा वो सब ठीक है। यदि मुझसे रत्न और सुवर्ण आदि लेने का तुम्हारा मन नहीं है तो कोई और कोई तुम्हारे मन में इच्छा तो वो बोल दो, लेकिन देखो मैं आज तुमको देने के लिए उतावला हो रहा हूं, तुम जो मांगो तो सही। ऋतध्वज ने कहा, भगवान आपके प्रसाद से मेरे पास क्या कमी है, मैं मांगूं, आपके दर्शन से सब मिल गया, आपने मुझे अपने छाती से लगा लिया, मेरा जीवन सफल हो गया, नागराज आपकी चरण धूलि जो मेरे मस्तक पर अपना स्थान बनाया है मैंने क्या नहीं पा लिया, यदि आपको मनोवांछित वर देना ही है तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में पुण्य कर्मों का संस्कार कभी दूर न हो, अर्थात मैं सदा पुण्य करता ही रहूं। अश्वतरु बोले, अरे वाह, ऐसा ही होगा, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। लेकिन देखो, मैं फिर तुमसे कहता हूं, तुम मेरे घर में आए हो, तुम्हें मनुष्य लोक में जो वस्तु दुर्लभ मालूम देती है वो मुझसे कहो। ये बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने दोनों मित्र नागकुमारों की मुख की ओर देखने लगे। तब उन दोनों पुत्रों ने पिता को प्रणाम करके राजकुमार के हृदय में रहने वाली जो अभिलाषा थी उसको स्पष्ट रूप से कहा, अब सुनो पिताजी, ये मेरे मित्र ऋतध्वज अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहेंगे, मैं कहता हूं, हम कहते हैं कि बोलो बेटा तुम कहो। पिताजी, गंधर्व राजकुमारी मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी, उसको किसी दुष्ट बुद्धि वाले दुरात्मा दानव ने जो इनके साथ बैर रखा था बड़ा धोखा दिया, उसने उसी दानव के मुख से इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर अपने प्यारे प्राणों को त्याग दिया। तब उन्होंने अपने पत्नी के प्रति कृतज्ञ होकर ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसा को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री से मेरा विवाह नहीं हो सकेगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मेरी पत्नी का स्थान मदालसा के लिए खाली था और खाली है और यही खाली रहेगा, तो रहेगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पिताजी, ये वीर ऋतध्वज आज उसी सर्वांग सुंदरी मदालसा को हृदय से चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं और उसी को ही अपने पास रखना चाहते हैं, यदि ऐसा कर सके तो अब आप विचार कर लीजिए, वो मर गई, उसको जला दिया, संस्कार कर दिया, अब आप देख लीजिए। तब नागराज खूब हंसे, कहा कि पुत्रों, जो मैं इसके मुख से सुनना चाहता था वो तुमने सुना दिया, खैर तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे और भी अच्छा लगा, मित्र की इच्छा को तो मित्र बताए, उसी में मित्रता सुरक्षित रहती है। नागराज ने अपने यहां छिपाई हुई मदालसा को लाकर उपस्थित किया और राजकुमार को दिखा दिया कि ऋतध्वज देखो, ये तुम्हारी मदालसा पत्नी, तुम्हारी मदालसा है कि नहीं। राजकुमार की आंखें फटी रह गई, आंखें मदाल से मैं क्या देख रहा हूं। वो थोड़ा आगे बढ़े, नागराज ने रोका और मदालसा के मरकर जीवित होने आदि की सारी कथा सुनाई। फिर तो अपने राजकुमारी को अपने राजकुमार ने अपनी प्यारी पत्नी को स्वीकार कर लिया। तदनंतर उनके स्मरण करते ही उनका वो प्यारा घोड़ा भी वहां आ गया और नागराज को प्रणाम करके घोड़े पर बैठ करके मदालसा को अपने साथ लेकर के बड़े प्रेम के साथ सबसे विदा हो करके ऋतध्वज अपने नगर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता से इसके मरकर जीवित होने का सब समाचार निवेदन किया। कल्याणमयी मदालसा ने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया तथा अन्य स्वजनों को भी यथा योग्य सम्मान दिया। तत्पश्चात उस नगर में बड़ा उत्सव हुआ। इसके बाद बहुत सा समय बीतने के बाद महाराज शत्रुजित पृथ्वी का भलीभांति पालन करते हुए परलोकवासी हो गए। तब पूर्ववासियों ने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वज को, जिनके आचरण और व्यवहार बड़े उदार थे, उस राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। वे भी अपनी प्रजा का औरस पुत्रों के भांति पालन करने लगे और बड़े आनंद से रहने लगे। तदनंतर मदालसा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उसका नाम विक्रांत रखा, छोटा पुत्र। इससे कुटुंब के सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, किंतु मदालसा वह नाम सुनकर हंसने लगी। जब वो बच्चा ये उत्तान होकर के जोर जोर से रोता, उत्तान कर माने ये दोनों पैर भी ऊंचे और हाथ भी ऊंचे, छोटा बच्चा ही होता है, पैर ही करता, ऐसे करके वो रोता था, तो उस शिशु को बहलाने के ब्याज से उसके अंदर ऐसे शुभ संस्कार भर दिए माता ने। शुद्धो सिरेता तनत नाम कृतम हिते कल्पनया धुनैव पंचात्मिकम पंचात्मकम देहमिदम नतेस्ति, पंचात्मकम देहमिदम नतेस्ति नैवास्य त्वम रोदशिकस्य हेतु। बेटा तू तो बड़ा शुद्ध है, न तेरा कोई नाम है, जो कुछ भी नाम वगैरह वो तो सब कल्पना से रखा हुआ है। ये पांच भूतों का शरीर भी तेरा नहीं है, तू इसका नहीं है, फिर बेटा रोता क्यों है रे? किस बात को लेकर रोना होता है? नवा भवान रोदिति वै स्वजन्मा शब्दो यमासाद्य महिष सूनु विकल्प्यमाना विबुधा गुणास्ते अगुणाश्च भौता सकलेन्द्रियेषु। ओ तू नहीं रोता है, ये शब्द तो राजकुमार के पास पहुंचकर अपने आप ही प्रकट होता है। तेरी संपूर्ण इंद्रियों में जो भांति भांति के गुण अवगुणों की कल्पना होती है, सब पांच भौतिक है, तू इन सब से न्यारा है। वो आत्मा की दृष्टि से बोलते हैं। भूतानि भूतये परिदुर्बलानि वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य नतेस्ति वृद्धिर्नतेस्ति हानि। जैसे जगत में जो बहुत दुर्बल आदमी होता है वो दूसरों के सहयोग से फिर आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम भी अन्न और जल के सहयोग से आगे बढ़ते हो। लेकिन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, न तो तुम्हारी कहीं वृद्धि होती है और न तुम्हारा कभी ह्रास होता है, हानि होती है। ये शरीर तो तुम्हारे लिए एक चोले के समान है, इसमें तेरा अपना करके कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, देहे मूढ़ता मां ब्रजे था, इस शरीर को मूढ़ता के कारण से अपना मत मान लेना। शरीर को अपना नहीं मानोगे तो शरीर से होने वाले कर्मों से भी तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ये संसार बड़ा विचित्र है बेटा। तातेति किंचित तनयेति किंचित दम्भेति किंचित दैतेति किंचित ममेति किंचित न ममेति किंचित त्वं भूत संगम बहुमानये था। इन शरीरों में कोई तो पिता का शरीर दिखता है, कोई माँ का शरीर दिखता है, कोई पुत्र का शरीर दिखता है, कोई बहन का शरीर दिखता है, और आओ ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे कहते रहते हैं। किसी का नहीं है। किसी भी वस्तु के लिए कहते हैं ये मेरी नहीं है, कोई कहते हैं ये मेरी है। इस भूत समुदाय में ऐसे ऐसे कई बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है। दुखानि दुखापगमाय भोगान सुखाय जानाति विमूढ चेता। मूर्खता की तो यही पहचान है बेटा कि दुख देने वाले विषयों में सुख की प्रतीति होती है। तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् अभिमूढचेता। और जो विद्वान है जिसका चित्त मोहित नहीं होता है वो उन्हीं सुखों के अंदर स्पष्ट दुख देखता है। हासोस्ति दर्शन दर्शनम अक्षि युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया। ये फिर और बताया कि स्त्रियों की हंसी के अंदर क्या होता है, मादकता होती है और वे अपने शरीर प्रदर्शन से दुनिया को मोहित करते हैं। सब शरीर मांस से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, इसलिए युवती स्त्री को नरक की जीती जागती मूर्ति समझनी चाहिए, ऐसा कहा है। पृथ्वी पर सवारी चलती है, सवारी पर यह शरीर रहता है। यानम क्षितौ यान गतश्च देह देहो पिचान्य पुरुषो निविष्ट है ममत्वमूर्याम न तथा यथा स्वे देहेति मात्रम च विमूढ तैषा। अरे पृथ्वी के अन्न से शरीर पलता है, पर शरीर में तो मोह करते हैं पर सारी पृथ्वी से मोह नहीं करते। देखो कैसी मूर्खता की बात है। न सवारी में, पृथ्वी पर सवारी चलती है, मोटर चलती है, मोटर में हम बैठते हैं, तो जितना शरीर में प्रेम है उतना सवारी में नहीं, मोटर में नहीं और उतना पृथ्वी में नहीं। अरे है एक देश ही जाति के, तो ये मूर्खता ही है और क्या है। ऐसी ऐसी शिक्षा देती थी वो मां। ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता त्यों त्यों महारानी मदालसा प्रतिदिन उसको बहलाने आदि के द्वारा ममता शून्य ज्ञान का उपदेश देती थी। उसके जैसे जैसे उसके शरीर में बल आता गया और जैसे जैसे वह पिता से व्यावहारिक बुद्धि सीखने लगा वैसे वैसे माता के वचनों से उसे आत्मज्ञान भी होने लगा। ऐसे करते करते वो आत्मा की अंतिम स्थिति तक पहुंचने वाला हो गया। इस प्रकार माता ने जन्म से अपने पुत्र को ऐसी संस्कारों के अंदर डुबाए रखा, उससे ज्ञानी और ममता शून्य होकर उसने गृहस्थ धर्म के प्रति अपने मन को जाने ही नहीं दिया। इस प्रकार जब मदालसा के गर्भ से दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ तब पिता ने उसका नाम सुबाहु रखा। उस पर भी मदालसा हंसने लगी, उस बालक को भी मदालसा ने पहले के भांति बचपन से ही ऐसे उपदेश दिया और वो भी अपने बड़े भाई के समान ज्ञानी हो गया। तीसरा पुत्र हुआ तो राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन राम रखा। इस पर भी वो मदालसा बहुत हंसी और उसको भी उसने पहले के भांति बाल्यकाल से ज्ञान का उपदेश दिया। वो बड़ा होने पर निष्काम कर्म करने लगा, सकाम कर्म की ओर उसकी रुचि नहीं थी। राजा ऋतध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने लगे तब सदाचार परायणा मदालसा पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस समय वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसको हंसते देख राजा को कुछ कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा कि देवी जब मैं किसी पुत्र का नाम रखने चलता हूं तब तब तुम हंसती हो, ये हंसने का कारण क्या है? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार से व्यर्थ में नहीं हंसते। मैं तो यही समझता हूं कि पहला पुत्र विक्रांत, दूसरा सुबाहु, तीसरा शत्रुमर्दन बड़े सुंदर नाम रखे हैं। ये क्षत्रियों के योग्य नाम है, विक्रांत मन तेजस्वी और महाब और सुबाहु जिसकी भुजाएं बड़ी अच्छी, शत्रुमर्दन ये तो नाम अपने क्षत्रियों के जो जोश पैदा करने वाले होते हैं। तुम जो हंसती हो तो मैं ये सोचता हूं कि क्या कोई तुम्हारे मन में और भी अच्छे नाम है क्या? तुम्हारे यदि अच्छे नाम हमारे वाले नहीं रखे तो चौथे बेटे का नाम तुम ही रख दो। मदालसा बोली कि हे महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, आप जैसे कहते हैं वैसे ही मैं अपने चौथे पुत्र का नाम स्वयं रखूंगी। यह धर्मज्ञ बालक इस संसार में अलर्क के नाम से पैदा होगा, विख्यात होगा। आपका यह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान होगा, अलर्क। भागवत में भी आता है, दत्तात्रेय जी ने अलर्क को ब्रह्म ज्ञान दिया था। माता के द्वारा रखे गए अलर्क इस असंबद्ध नाम को सुनकर अब राजा हंसने पड़े, हंसने लगे और पूछा, सुबह तुमने मेरे पुत्र का जो ये अलर्क नाम रखा है, इसका कारण क्या है? इसका तो कोई अर्थ भी नहीं लगता, अलर्क, इसका क्या अर्थ है, क्या कारण से तुमने ये नाम रखा है? और ये बड़ा अटपटा सा लगता है, इन तीनों भाइयों के साथ में इसका नाम मेल नहीं खाता है, इसका अर्थ क्या है? मंदालसा ने कहा, देखिए नाम वगैरह तो सब व्यावहारिक कल्पनाएं हैं, लौकिक व्यवहार के लिए रखा जाता है, बाकी नाम का आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। लोक व्यवहार के लिए कोई सा नाम रख दिया जाता है, इससे पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं। आपने जो भी नाम रखे वे भी निरर्थक हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं निरर्थक कैसे हैं, सुनो। ज्ञानी लोग आत्मा को व्यापक बतलाते हैं। आपने प्रथम पुत्र का नाम विक्रांत रखा है, उसके अर्थ पर विचार कीजिए। क्रांति का अर्थ होता है गति, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने को गति कहते हैं। जब इस देह का ईश्वर आत्मा सर्वत्र व्यापक है, तब वह दूसरी जगह पर जा ही नहीं सकता, अतः उसका नाम विक्रांत रखना मुझे निरर्थक मालूम दिया, इसलिए मैं वहां हंसी थी। दूसरे का नाम आपने सुबाऊ रखा, उसका भी आपको अर्थ बता देती हूं। यह भी व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, उसके कहां भुजा होती है, कहां माथा होता है, कहां पैर होते हैं, आपने सुबाऊ नाम रख दिया, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं हंसी। तीसरे पुत्र का नाम जो आपने अरिमर्दन रखा, वो भी कोई समझ में नहीं आया। अरिमर्दन का अर्थ होता है शत्रु का मर्दन करने वाला। जब सब शरीर एक है, सब एक ही है, तो कौन किसका मित्र, कौन किसका शत्रु? मूर्तिमान भूतों के द्वारा मूर्तिमान भूतों का ही मर्दन होता है, आत्मा तो अमूर्त है, वो उसका कौन शत्रु कौन मित्र? और क्रोध आदि से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। अरिमर्दन तो वो होता है शत्रु पर क्रोध करे, आत्मा के अंदर क्रोध नहीं, आत्मा में कामना नहीं, आत्मा में लोभ नहीं। तो व्यवहार का ये भलीभांति निर्वाह करने के लिए ऐसे असंगत नामों की कल्पना हो सकी, तो मैंने भी अलर्क नाम रख दिया। तो अलग नाम से क्यों आपको निरर्थकता होती? आपके नाम के रखे हुए कौन से अर्थ टपकते हैं इसमें? कोई नहीं, अर्थ का साथ मेल नहीं खाता। राजा ने कहा, तुम विदुषी हो, यथार्थवादिनी हो, तुम्हारा कथन एकदम सत्य है, तुमने बड़ी ज्ञान की बातें कही हैं। तदनंतर जब मदालसा अपने चारों पुत्रों को अनेक प्रकार से ज्ञान की बातें समझाती थी, तो राजा ने उसे रोक करके कहा, अरे क्या करती हो तुम, इनको ज्ञान दोगी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, ये जंगलों में रहना चालू कर देंगे, ये मेरे वंश की परंपरा का उच्छेदन कर देंगे, तुम हमारे वंश परंपरा के उच्छेदन में क्यों तुली हुई हो? यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना हो और यदि मेरी बातों को मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो, तो मेरे पुत्रों को वापिस संसार के काम में लगाओ, ये राज्य संचालन और ये वंश कौन चलाएगा। देखो हमारे बड़ेरों ने, पूर्वजों ने बड़े प्रेम से स्नेह से प्रजा का पालन किया है, कर्म मार्ग का बहुत अच्छा उदाहरण रखा है। ये कर्म मार्ग का उच्छेदन हो जाएगा यदि तुम इसको ज्ञान दोगे तो। इनको प्रवृत्ति मार्ग में लगाओ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तो फिर पितरों को पिंडदान कौन देगा। जो पितर देवलोक में है, जो तिर्यक योनि में है, जो मनुष्य योनि में है और जो और प्राणियों में है, ये पुण्यात्मा हो चाहे पापात्मा हो, भूख तो सबको लगती है। और यदि पितरों के निमित्त कुछ नहीं करोगे तो वो विकल हो जाएंगे। तो अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंडदान तथा जलदान के द्वारा उनको सदा तृप्त रखता है। इस तरह वे देवताओं को, अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुयक, पक्षी, कृमि, कीट आदि भी मनुष्य से ही जीवित चलते हैं। इसलिए हे परम सुंदरी, तुम मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश दो जिससे इस लोक और परलोक में उत्तम फल मिले और वे सब क्षत्रियोचित कर्म करें। पति के यूं कहने पर मदालसा अपने पुत्र अलर्क को बहलाती हुई बोलती है, धन्यो सिरेयो वसुधाम शत्रु एकश्चिरं पालयितासि पुत्र तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्। केवल एक अलर्क को अब विशेष समझाने लगी कि बेटा तू बड़ा धन्य रे, तेरे द्वारा पृथ्वी का पालन हो और तेरा संसार में कोई शत्रु न हो और सारी पृथ्वी का तू राजा बन और उसके पालन करने से तू धर्म का पालन करेगा और धर्म का पालन करने वाला अमरत्व को प्राप्त होता है। धर्म को साथ में रखना। धरा हमारा अन पर वसु पर तर्प ये था, और देवताओं का पालन करना, पर्व के दिनों में ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करना, बंधु बांधवों को तृप्त करना, सदा मुरारिम हृदय चिंतये था, और हृदय में सदा वासुदेव का चिंतन करते रहना। यह नित्यता में विचिंतये, संसार को कभी नित्य मन नहीं मानना, ये सब माया के द्वारा दिखाई देने वाला है। अर्थागमाय क्षितिपांजये था यशोर्जनायार्थमपि व्यये था। देखो अपने पास में जो भी कोई वस्तु होती है उस वस्तु का सबके अंदर वितीर्ण करना, अपने अकेला नहीं रखना। शत्रुओं को जीतना है तो अपने अंतःकरण के शत्रुओं को जीतना, बाहर में किसी को भी शत्रु मत मानना। ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना, धन की आय के लिए राजाओं पर विजय प्राप्त करना और यश के लिए धन का सदव्यय करना, पराई निंदा से तुम डरते रहना और विपत्ति के समुद्र में पड़े हुए लोगों का उद्धार करना। राजाओं पर धन के लिए जो ये आक्रमण की बात कही है तो ये बात केवल इसलिए कही गई है कि शत्रु भाव से आक्रमण मत करना, राज्य विस्तार के लिए मत करना, धन के लिए करना ताकि प्रजा का पालन हो। तो अनेकों यज्ञों के द्वारा देवताओं तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों को, शरणागतों को संतुष्ट करना। बाल्यावस्था में तो भाई बंधुओं को आनंदित करते रहना, कुमार अवस्था में आज्ञा पालन के द्वारा गुरुजनों को संतुष्ट करना, युवावस्था में उत्तम कुल को सुशोभित करने वाली स्त्री को प्रसन्न रखना और वृद्धावस्था में वन के भीतर निवास करते हुए वनवासियों को सुख देना। राज्यम कुर्वन सुरिदो नंदये था साधुन रक्षंस्तात यज्ञैर्यजे था दुष्टान निघ्नन वैरिणश्चाजि मध्ये गोवी प्रार्थे वत्स मृत्युम व्रजे था। मरने में चलो तो गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए सेवा करते करते अपने प्राण न्योछावर देना। इस प्रकार माता के द्वारा प्रतिदिन बहलाया जाता हुआ बालक अलर्क थोड़ी बड़ी अवस्था को प्राप्त हो गया, थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसका उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। पश्चात बुद्धिमान राजकुमार ने माता को प्रणाम करके कहा, मां मुझे इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे बताओ। मदालसा बोली, बेटा ये तुम्हारे तीन भाई तो अब किसी प्रकार से राज्य को स्वीकार करेंगे नहीं, इनको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया प्रारंभ से ही, अब तुम राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाओ। तो जब राज्याभिषेक हो जाए तो उस समय राजा के लिए उचित है कि अपने धर्म के अनुकूल चले, आरंभ से ही प्रजा का ध्यान रखना, सात प्रकार के व्यसन है उनसे दूर रहना। सात प्रकार का व्यसन क्या? एक तो कटु वचन बोलना, ये व्यसन है, और दूसरा है कठोर दंड देना, ऐसा भी नहीं, एक धन का अपव्यय करना, फालतू खर्च करना, ये भी व्यसन है, एक मदिरा पीना, एक स्त्रियों में आसक्ति रखना, एक शिकार खेलने में व्यर्थ समय लगाना, और एक जुआ खेलना, ये राजा के लिए सात व्यसन होते हैं, इनका परित्याग करना, क्योंकि इन व्यसनों का सेवन करोगे तो राजा का मूलोच्छेदन हो जाएगा। दूसरी बात तुमको ये सिखाती हूं कि अपनी जो गुप्त मंत्रणा है उसके बाहर फूटने से उसका लोग लाभ उठा सकते हैं और शत्रु भी लाभ उठा सकते हैं और शत्रु आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए अपना जो गुप्त विचार होता है वो पहले प्रकट नहीं करना, उसको अपने अंदर रखना, फिर मौके पर प्रकट करना। जैसे रथी रथ की गति वक्र होने पर आठों प्रकार से नाश को प्राप्त होता है, जैसे रथी है रथ की गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो वो सब प्रकार से नष्ट हो जाता है, उसके ऊपर आठों दिशाओं से प्रहार होने लगते हैं, उसी प्रकार गुप्त मंत्रणा के बाहर फूटने पर राजा को आठ वर्गों का निश्चय ही नाश होता है। आठ वर्ग, एक तो उसकी खेती, एक व्यापार, एक ये किले वगैरह बनाना, एक पुल बनाना, एक जंगल से हाथी पकड़कर मंगवाना, खानों पर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाओं से कर लेना, और निर्जन प्रदेश को आबाद करना, ये आठ वर्ग होते हैं राजा के, सुदृढ़ राजा के ये खत्म हो जाते हैं। राजा को इस बात का भी पता लगाते रहना चाहिए कि शत्रु के द्वारा उत्पन्न किए गए दोष से अथवा शत्रुओं के बहकावे में आकर अपने मंत्रियों में से कौन दुष्ट हो गया है और कौन दुष्ट नहीं है, कौन शत्रुओं के प्रभाव में है और कौन नहीं है, और कौन हमारा अपना खास विश्वस्त साथी है और कौन शत्रुओं से मिला हुआ है, इस बात को अपने गुप्तचरों के द्वारा बराबर निगाह रखना। राजा को अपने मित्रों तथा माननीय बंधु बांधुओं पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना, किंतु काम पड़ने पर उसे शत्रु पर भी विश्वास कर लेना चाहिए, ये तुम्हारी योग्यता ऐसी होनी चाहिए। किस अवस्था में शत्रु पर चढ़ाई न करें और किस अवस्था में हमको अपने स्थान पर ही रहना उचित है और कब आक्रमण करें, ये सब सोच विचार करने की बात होती है। ये छह गुण होते हैं राजा में, संधि, विग्रह, यान, आसन, दैवी भाव और समाश्रय, छह गुण होते हैं। कब शत्रु से मेल कर ले, कब लड़ाई छेड़ दें, कब आक्रमण कर दें, और कब अवसर की प्रतीक्षा में बैठे हैं चुपचाप, अभी मौका नहीं, चुप रहो अभी मौका नहीं है, कब दुरंगी नीति से भेद करवा देवे, और कब राजा की अपने से बलवान राजा को बुलाकर उसकी शरण लेकर के समाश्रय कहलाए, ये सब बातों का ध्यान रखना है। कभी काम के अधीन मत होना, राजा पहले अपने आत्मा को और फिर मंत्रियों को जीते, तत्पश्चात अपने भरण पोषण पाने वाले कुटुंबी जनों को और फिर सेवकों के हृदय पर अपना अधिकार जमाए, तदनंतर पूर्ववासियों को अपने गुणों से जीते, यह सब हो जाने पर शत्रुओं के साथ विरोध करे, जो इन सबको जीते बिना ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसके हाथ में विजय कभी नहीं मिलती है। पहले अपने परिवार को श्रद्धा का पात्र बनाओ। इसलिए बेटा, पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को पहले काम आदि शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करो, उनके जीत लेने पर विजय अवश्यम भावी है। यदि राजा ही काम क्रोध आदि के वशीभूत हो गया तो वो नष्ट हो जाएगा। काम क्रोध लोभ मद मान और हर्ष ये राजा का विनाश करने वाले हैं। राजा पांडु स्त्री में आसक्त होने के कारण मारे गए थे तथा अनुराग क्रोध के कारण अपने पुत्र से हाथ धो बैठा था। ये विचार करके अपने को काम और क्रोध से अलग रखना। राजा पुरुरवा थे वो लोभ से मारे गए, और राजा वेन थे वो मद के कारण से ब्राह्मणों ने उसको मार डाला। यूं हुंकार के खत्म हो गया वो केवल घमंड से। अनायुष के पुत्र को मान के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा तथा पुरंजय की मृत्यु हर्ष के कारण हुई, किंतु महात्मा मरुत ने इन सबको जीत लिया था इसलिए वे संपूर्ण विश्व पर विजयी प्राप्त हुए। ये सोचकर राजा उपर्युक्त दोषों का सर्वथा त्याग करे। वह कौवे कोयल भौरे हिरण सांप मोर हंस मुर्गे और लोहे के व्यवहार से शिक्षा ग्रहण करे। राजा अपने शत्रु के प्रति उल्लू का सा बर्ताव करे, जैसे उल्लू पक्षी रात में सोए कौओं पर चुपचाप जाकर धावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रु की असावधान अवस्था में उस पर आक्रमण करे तथा समयानुसार चींटी सी चेष्टा करे, धीरे धीरे आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करता रहे। राजा को आग की चिंगारियों तथा सेमल के बीज से कर्तव्य की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे एक आग की छोटी सी चिंगारी बड़े से बड़े वन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार छोटा सा छोटा शत्रु भी यदि दबाया न गया तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है। जैसे छोटा सा सेमल का बीज एक महान वृक्ष के रूप में परिणित होता है। सेमल वृक्ष अपने बट वृक्ष समझ लो ना, इतना सा बीज होता है, कितना विशाल हो जाता है। उसी प्रकार छोटा शत्रु भी समय आने पर बड़ा प्रबल हो जाता है, अतः दुर्बलावस्था में उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य अपनी किरणों का सर्वत्र समान रूप से प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीति के लिए राजा को भी समस्त प्रजा पर समान भाव रखना चाहिए। वेश्या कमल शरभ शूलिका गर्भिणी स्त्री के स्तन तथा ग्वाले की स्त्री से भी राजा को सीखना चाहिए। राजा वेश्या के भांति सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करे, कमल के पुष्प के समान सबको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभ के समान पराक्रमी बने, शूलिका के भांति सहसा शत्रु का विध्वंस करे। शूली और जैसे गर्भिणी स्त्री के शरीर में दूध का संग्रह होने लगता है, अभी बालक नहीं हुआ लेकिन दूध का संग्रह होता है, उसी प्रकार राजा भविष्य के लिए संचयशील बने। और जिस प्रकार ग्वाले की स्त्री दूध से नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करती है, वैसे ही राजा को भी भांति भांति की कल्पना में पटु होना चाहिए। ऐसा करें तो ऐसा करें। ये पृथ्वी का पालन करते समय इंद्र के समान, सूर्य के समान, यम के समान, चंद्रमा के समान और वायु के समान माना जाता है। जैसे इंद्र 4 महीने वर्षा करके पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार राजा भी दान आदि के द्वारा प्रजाजनों को संतुष्ट करे। जिस प्रकार सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सोखते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायों से धीरे धीरे कर आदि का संग्रह करे। जैसे यमराज समय आने पर प्रिय अप्रिय सभी को मृत्यु पाश में बांधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय अप्रिय तथा साधु और दुष्ट के प्रति समान भाव से राजनीति का उपयोग करे। जैसे पूर्ण चंद्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जिस राजा के प्रति समस्त प्रजा को समान रूप से संतोष हो, वही राजा श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे वायु गुप्त रूप से समस्त प्राणियों के भीतर संचार करती है, उसी प्रकार राजा भी गुप्तचर के द्वारा पूर्ववासियों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों के मन का भाव जानने की चेष्टा करे। बेटा, जिसके चित्त को दूसरे लोग लोभ से, कामना से अथवा अर्थ से नहीं खींच सकते, वह राजा बहुत बड़ा शूरवीर होता है और अंत में मरने के बाद उसको ऊंचा लोक, स्वर्ग लोक मिलता है। जो अपने धर्म से विचलित हो कुमार्ग पर चला जाता है, ऐसे मूर्ख मनुष्य को फिर धर्म में लगाता है, वह राजा स्वर्ग में जाता है। कोई मूर्ख है, समझा बुझा करके उसको लगावे तो वह स्वर्ग में जाता है। जिसके राज्य में वर्ण, धर्म और आश्रम को हानि नहीं पहुंचती, उसे इस लोक और परलोक में भी सनातन सुख प्राप्त होता है। स्वयं दुष्ट बुद्धि पुरुषों को द्वारा धर्म से विचलित न होकर ऐसे लोगों को अपने धर्म में लगाना, यह राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और यही उसे सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। राजा सब प्राणियों का पालन करने से कृतकृत्य होता है। जो यत्न पूर्वक भली भांति प्रजा का पालन करने वाला है, वह प्रजा के धर्म का भागी होता है। जो राजा इस प्रकार चारों वर्णों की रक्षा में तत्पर होता है, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है और अंत में उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। अलर्क ने पूछा, मां आपने राजनीति का तो वर्णन किया, अब मैं वर्ण और आश्रम के धर्म के विषय में पूछना चाहता हूं। इसके विषय में मदालसा आगे कहेगी।
राम